कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के न्यूज़लेटर के लिए रेडियो से जुड़े व्यक्तित्व का साक्षात्कार। आज महिला दिवस के अवसर पर अंक एक में प्रस्तुत है अर्चना कपूर से संज्ञा टंडन की बातचीत।
रेडियो जानकारियां, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने वाला सबसे पुराना साथी। ऑल इंडिया रेडियो, सीलोन, बीबीसी जैसे रेडियो से होता हुआ आधुनिक हैम रेडियो, वेब रेडियो, कमर्शियल रेडियो और कम्युनिटी रेडियो, अलग अलग रूप रेडियो के, पर सबका माध्यम एक ऑडियो और सबका उद्देश्य एक समान। कम्युनिटी रेडियो कुछ अलग है बाकी रेडियो से। ये वॉइसलेस लोगों का रेडियो है, ये आम जनता के लोगों द्वारा चलाया जाने वाला रेडियो है, ये दो तरफा रेडियो है और भी बहुत सारी खूबियां हैं इस सामुदायिक रेडियो में, जिससे बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई हैं हमारी आज की मेहमान अर्चना कपूर। एक बहुत बड़े और पुराने एनजीओ स्मार्ट की निदेशक हैं। स्मार्ट यानी कि सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशंस फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन। अर्चना जी के इस एनजीओ के माध्यम से मेवात कम्युनिटी रेडियो का संचालन होता है। बेहद अनुभवी और कर्मठ अर्चना कपूर कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की संस्थापक सदस्य हैं और ये पहले कोषाध्यक्ष रहीं, फिर जनरल सेक्रेटरी रहीं और आज ये हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। स्वागत है अर्चना जी आपका, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में।
संज्ञा जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बहुत ही अनोखे अनूठे कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और आपने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एक एनजीओ छोटी सी है जो हम लोग यूपी में रजिस्टर्ड हैं, हरियाणा में और देश भर में काम करते हैं। रेडियो स्टेशंस के साथ मिल करके थोड़े से बदलाव की लहर लाने की एक कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो काम बहुत कठिन है, मेहनत बहुत करनी है और सबका साथ चाहिए इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफर में।
जी बिल्कुल, हमको ऐसा लग रहा है तो आप अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। छोटा एनजीओ नहीं, आप इतने सारे रेडियोस को देश भर के साथ में लेकर चल रही हैं और आपके कारण कितने सारे रेडियोस की स्थिरता बनी हुई है, उन लोगों को कुछ ना कुछ लगातार प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं, वो सारी चीज लीड करने वाले लोग भी तो होने चाहिए और ऐसे लोगों में से आप हैं। तो अर्चना जी आप पहले ये बताइए, आप मेनली एनजीओ वाली हैं, आपको रेडियो में इंटरेस्ट कैसे आया?
एनजीओ तो मैंने बाद में शुरू किया 1997 में, लेकिन मैं काम काफी सालों से कर रही थी। मैंने बहुत सारे नौकरियां, सरकारी नौकरियां भी छोड़ करके सोचा कि क्यों ना कम्युनिटी के साथ काम किया जाए, बिकॉज कोई ना कोई तो एक जो भी आपको मिला है उसको वापस देने के लिए भी सोचना पड़ता है, और मेरी तरह बहुत सारी और महिलाएं भी इस मुहिम में जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं और हमारा काम हरियाणा में मेवात डिस्ट्रिक्ट तब हुआ करता था, अब नूह है, उसमें हमने शुरुआत करी सन 2000 से। और कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि अभी यहाँ काम करने की बहुत ज़रूरत है, हमें प्रोजेक्ट मोड से हटना पड़ेगा। आज प्रोजेक्ट आया, कुछ आया, काम आप एक सतत तरीके से नहीं कर सकते हैं, सस्टेनेबल वे में नहीं कर पाते हैं, और फिर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप कुछ और करने लगते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ इस प्रकार का काम किया जाए जिसमें समुदाय स्वयं एक स्टेक होल्डर बन जाए, बराबर की भागीदारी हो उनकी। और उसी समय ये खुला था एनजीओस के लिए भी कम्युनिटी रेडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले केवल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस मिलता था, लेकिन 2006 दिसंबर से एक जब जो मुहिम चला था उसके बाद उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं को भी लाइसेंस देना शुरू किया, लेकिन प्रोसेस होते होते 2008 हो गया और हमें लगा कि अगर हमें कोई सस्टेनेबल चेंज लाना है, अगर कम्युनिटी को वाकई में एम्पावर करना है, तो हम उनको एक रेडियो देंगे जो कि वो स्वयं चलाएं और स्वयं सोचें कि समुदाय के लिए इसका क्या फायदा हो सकता है। तो हम लोग ने भी अप्लाई किया और हमें लाइसेंस मिलते मिलते थोड़ा समय लगा। 2010 पहली सितंबर को हम लोग ने इसको लॉन्च किया। और हमारे रेडियो की खास बात यह है कि टोटली कम्युनिटी ड्रिवन है। यहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग भी अब उसमें ज्यादा दखल नहीं देते हैं कि क्या प्रोग्राम चलना चाहिए, किस तरीके से उसका संचार होना चाहिए, किस तरीके से कितने बजे कौन से प्रोग्राम, ये सब हमारा समुदाय ही डिसाइड करता है। कौन से गाँव में जाना है, पूरा सुबह मीटिंग होती है, पूरा डिसाइड होता है। हर महीने एक कार्यक्रम शेड्यूल बनता है। और क्योंकि हम लोग नूह में रहते हैं, थोड़ा सा पिछड़ा इलाका, थोड़ा सा क्या, बहुत पिछड़ा इलाका है, देश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। अब शायद हम लोग तीसरे नंबर पे। लोग बहुत अच्छे हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गुड़गांव जो इतना करीब है, करीब केवल 30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन गुड़गांव की लैंडस्केप एकदम अलग है और मेवात की एकदम अलग, नूह की एकदम अलग। लेकिन उसी इलाके में फिर ये सोच के कि कुछ ऐसा किया जाए जो एक एम्पावरिंग इम्पैक्ट हो, क्योंकि हमारी हमारी ये सोच रही शुरू से कि यदि आपके पास जानकारी ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर रेडियो की जानकारी ना होती तो शायद रेडियो भी ना सेट करते। तो जानकारी के अभाव में लोग पिछड़े रह जाते हैं। जानकारी ना हो कि सरकार इतना काम कर रही है और ये हमारे लिए कर रही है, तो आप किसी ना किसी तरीके से पीछे रह जाएंगे। कुछ करप्ट फोर्सेस आपको आगे नहीं आने देंगे। यदि आपके पास जानकारी हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस सोच से हम लोग ने ये रेडियो स्टार्ट किया। मैं बाय प्रोफेशन एक फिल्म मेकर भी हूँ, तो फिल्म और ऑडियो का बहुत क्लोज संबंध होता है। सारी रिकॉर्डिंग जो वॉइस ओवर वगैरह हम लोग ऑडियो ही करते हैं, तो इसलिए हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और हम शुरू से ही एम्पैनल थे डीएवीपी में एनएफडीसी से, तो हम लोग को ऑडियो के भी हमने काम किए थे। लेकिन समुदाय को जोड़ना, समुदाय को ट्रेन करना, समुदाय के द्वारा इस पूरे रेडियो को चलाना, उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस थी, लेकिन वो भी अब ओवरकम हो गई हैं। 13 साल हो गए हैं, हमारी एक टीम है, 8-10 लोगों की बहुत स्ट्रांग टीम है, जिसमें बराबर महिलाएं और पुरुष हैं। जहां हमें महिलाओं को लाने में इतनी ज्यादा परेशानी हुई थी शुरू के 2 साल, लेकिन अब हमारे पास महिलाएं खुद पे खुद आती हैं, और यदि किसी की शादी हो जाती है या वो नूह छोड़ देती हैं तो दूसरे लोग तैयार होते हैं। तो अब एक स्मूथ ही कहूंगी इस जर्नी को, अब काफी हद तक अपने आप चल रहा है रेडियो।
बहुत अच्छी यात्रा आपने बताई। ठीक है, 13 साल लगे, और उस समय तो कम्युनिटी रेडियोज को और भी लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी। दूसरे बहुत सारे रेडियोज थे, लोग उन्हीं को सुनते थे, और आज भी उतनी ज्यादा नहीं है लोगों को, क्योंकि रेडियो मतलब एंटरटेनमेंट ज्यादा समझते हैं। एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट अगर आते हैं तो लोग रेडियो का चैनल चेंज करना प्रीफर करते हैं, बहुत सारे लोग। तो आज भी इस कितना ज्यादा फायदा हो सकता है कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से, किस तरह से बदलाव हो सकता है, आपके यहाँ का कोई ऐसा उदाहरण बताइए कि किस तरह से कुछ कोई बदलाव आया हो आपके रेडियो के थ्रू।
आपके 2-3 स्टेटमेंट्स भी हैं और एक सवाल भी है, तो मैं सभी को एड्रेस करूंगी। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हम नूह जैसे इलाके में हमने काम शुरू किया। जैसा मैंने बताया पहले मेवात था, वहां पर कोई भी रेडियो नहीं आता था, यहाँ तक कि भी जो ऑल इंडिया रेडियो का रेनबो है वो भी नहीं पहुंचता था। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमारे लिए एक एडवांटेज था, हमें एक बेनिफिट था, क्योंकि लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन का साधन नहीं था। तो रेडियो मेवात ने एक ऐसी अहम भूमिका निभाई उस रीजन में कि जहां पर लोगों के लिए एक सिंगल स्रोत बना इन्फॉर्मेशन का। और मैं जब 13-14 साल पुरानी बात कर रही हूँ तो लोगों के पास इतने सारे स्मार्टफोन भी नहीं थे। अब तो हर घर में एक स्मार्टफोन कम से कम होगा, लेकिन विमेन को आज भी एक्सेस नहीं है। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि जब हमने शुरू किया तो हमारे पास कॉम्पिटिशन बहुत कम था, ऑल इंडिया रेडियो भी इतना नहीं सुनते थे लोग, और एक पता नहीं क्यों इस प्रकार से मानते थे कि रेडियो सुनेंगे टीवी देखेंगे तो खराब हो जाएंगे। आज भी हमारे मेवात में नूह में बहुत कम लोगों के पास टेलीविजन है, बहुत कम घरों में, मुश्किल से 20% घरों में टेलीविजन है। और ये आप लोगों को थोड़ा सा अचंभा होगा ये सुन के, लेकिन यही खासियत है इस देश की कि जहाँ एक तरफ सिलिकॉन वैली है और इतना प्रोग्रेस है, वहीं पर दूसरे तरफ कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो अभी भी काफी विकास से दूर हैं। दूसरी बात ये है कि बदलाव की जहाँ तक आप बात करें, तो हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं एक साल, दो साल, तीन साल के बाद वो इतना कुछ हासिल कर रही हैं कि हम आपको क्या बताएं। जैसे हमारे यहाँ एक लड़की थी वरीसा, वो फिर पंचायत इलेक्शंस में खड़ी हुई, वो केवल 6 वोट से हारी। ये हमारा बदलाव सिर्फ रेडियो के कारण हुआ। जो लड़की पहले कभी उसने रेडियो नहीं देखा था, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि लोग इस डिब्बे के अंदर कैसे घुसते हैं, और ये सच्चाई है। और वो आई थी यही अपने दादाजी के साथ देखने के लिए कि हम लोग कैसे रेडियो में घुस सकते हैं, उनके घर कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि दादाजी रेडियो सुनते थे। और फिर वो हमारे रेडियो का एक बहुत अहम हिस्सा बनी, और मतलब उसने बहुत अचीव किया, हेल्प किया। आज वो मेडिकल कॉलेज में एक लैब असिस्टेंट की तरह काम कर रही है, हालांकि वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसने डिस्टेंस एजुकेशन से किया। जितनी भी हमारे यहाँ से लड़कियाँ निकली हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो कि हमें लगता है कि हम लोगों का नाम भी ऊंचा कर रही हैं। दूसरी बात, जितने भी जब हम लोग गए थे वहाँ कोई भी नहीं था, बहुत कम एनजीओस थी, एक बहुत हॉस्टाइल माहौल था, काफी सारे एनजीओस को ब्लैकलिस्ट किया गया था, बहुत एक अलग ही कहानी है वो। उस माहौल में हमने एंट्री की थी, और अपने लिए एक पहचान बनाना, लोगों का विश्वास जीतना, लोगों को बताना कि हम साथ में काम करेंगे, हम एक ही टीम के लोग हैं, हम कोई बाहर के नहीं हैं, आप हमें अपनाएंगे तो हम आपके हो जाएंगे, इस तरीके के माहौल में हम लोग ने काम किया। बाद में आज अगर हम बात करें तो ढेरों एनजीओस हैं, और मुझे लगता है कि हर एनजीओ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी ना कभी स्मार्ट से जुड़ा रहा है, और बहुत सारे लड़के रेडियो से जुड़े रहे हैं, उनको एक बोलना आ गया है, उनको यू नो प्रेजेंटेशन आ गया है, उनको एक कल्चर भी आ गया है, यू नो देयर वॉइस हैज बिकम कल्चर्ड। तो बहुत बदलाव आया है लोगों की जिंदगी में, और सबसे बड़ी बात है कि रेडियो मेवात लोगों की एक पहचान बन गई है, उनकी एक आइडेंटिटी है, इससे बड़ी बात हमारे लिए हो नहीं सकती।
सचमुच इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती अर्चना जी, कि आप लोगों ने 13 साल में इतना कुछ पाया है, इतने सारे लोगों को तैयार किया है, और अब देश भर के लोगों को तैयार कर रहे हैं। यशोभरा हमारे साथ उपस्थित हैं, कोई प्रश्न अर्चना जी से पूछना चाहेंगी?
जी अर्चना जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ मैं भी, इतनी अच्छी बातें आपने कही, और जो आपने बताया कि लड़कियां किस तरह से आगे आ रही हैं रेडियो के थ्रू, ऐसी जगह में जहां पर कोई सुनने समझने वाला नहीं था, और आपके साथ जुड़ के और इतना बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मेरा ये सवाल है कि मेन आप किन किन चीजों पर फोकस करती हैं, यानी आपका जो रेडियो है और आपका जो एनजीओ है वो किन मुद्दों को उठाता है या सामने लाता है?
देखिए, एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते हम एक माध्यम है, जो मुद्दे समुदाय जानना चाहती है, हमारे सामने लाती है, उन्हीं मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगी वही जो सब लोग जवाब देते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, ये तो है ही, लेकिन बहुत सारे और मुद्दे हैं। जैसे हम लोग करते हैं कार्यक्रम काम की बात, लाइसेंस कैसे बनाना है, राशन कार्ड में गलत नाम है उसको कहाँ ठीक करना है, आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम अलग अलग हैं उनको कैसे करना है, तो ये हम लोग करते हैं काम की बात रेडियो मेवात के साथ। ये एक काफ़ी अच्छा हमारा प्रोग्राम, लोगों को पसंद आता है। दूसरा, हम लोग जो एक बात करते हैं, एक हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं उड़ान, तो जो भी नूह के बच्चे बाहर निकल के गए हैं और जो अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग एक रूबरू करते हैं, जो कि एक मोटिवेशनल और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है कि चैलेंजेस भी हैं, आप एक फुली क्लोज एनवायरनमेंट से बाहर निकल के जा रहे हैं, आपको कल्चरल डिफरेंसेस हैं, आपको भाषा के डिफरेंसेस हैं, आपको कास्ट, क्लास, रिलीजन के डिफरेंसेस हैं, उस माहौल में आप किस तरीके से अपने को औरों के साथ जोड़ते हैं, मेन स्ट्रीम करते हैं, और फिर कैसे काम करते हैं, तो दैट इज अनदर प्रोग्राम। एक कार्यक्रम हम लोग पंचायत के ऊपर करते हैं, क्योंकि लोगों को आज तक ये नहीं पता कि उनको ग्राम सभा के, वो 18 साल के बाद हर व्यक्ति ग्राम सभा का एक हिस्सा है, तो उसको रीइन्फोर्स करने के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। और हमें याद है कि जब हमने शुरू में जब हमारो राज पंचायती राज स्टार्ट किया था तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर आए थे, उन्होंने कहा मैडम ये क्या कर दिया, हम लोगों ने सोचा शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया हो, उन्होंने कहा आपने हमारा काम बढ़ा दिया। अब लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ग्राम सभा हुई नहीं। तो ये भी एक छोटे छोटे बदलाव के हिस्से हैं जो कि हमारे रेडियो के माध्यम से ला रहे हैं। और एक हम लोग जो करते हैं खेलो सहेली कार्यक्रम, जो केवल महिलाओं के लिए होता है और महिलाएं ही कंडक्ट करती हैं, महिलाओं के लिए होता है। डोमेस्टिक वायलेंस हिंसा को नो का रेडियो अर्पा भी हिस्सा रही है, वो हमारे लगभग 4 साल से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। एक जो बहुत खास कार्यक्रम हम करते हैं यूथ के लिए वो है ज्ञान की बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, बहुत डेवलप्ड नहीं है ये इलाका, तो लोग अगर कॉम्पिटिशन में बैठना चाहें तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो गाइड लेके या कोई भी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू या कोई भी इस तरीके की मैगजीन्स हम लोग लेकर के रोजाना 4 से 4:30 बजे हमारे रेडियो पे चलता है ज्ञान की बात। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थीम्स ले ली जाती है, और उसमें पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज्यादा कहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट पे आप लोग क्यों नहीं कुछ करते, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली थीम्स बनाई जाती हैं। लेकिन मुझे ये बात बताने में बहुत खुशी है कि हमारे सारे प्रोग्राम्स, सारा कंटेंट कम्युनिटी ड्रिवन है। एक हमारा कार्यक्रम सालों से चल रहा है मेरा गांव कैसा हो, क्योंकि एस्पिरेशन है, होप है, डिजायर है, हर किसी का ख्वाब होता है कि हमारा गांव सबसे अच्छा बने, हमारा एक मॉडल गांव बने। तो क्या कमियां हैं, क्या हासिल किया है, क्या नहीं हासिल किया, उसमें अब हम लोगों को सरपंच फोन करते हैं या को गांव के बुजुर्ग करते हैं या यूथ करते हैं, कहते हैं हमारे गाँव को भी कवर करिए। लगभग 500 गाँव हैं और बदलते जाते हैं, तो कहवा करते हुए भी फिर भी उसमें बदलाव के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्कूलों की कहानियां और लाइक क्या बना है, क्या नया है, वो मेरा गांव कैसा हो एक कार्यक्रम है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश है। बाकी जो रूटीन कार्यक्रम है, जो कुछ कहीं से कोई स्पॉन्सर होते हैं या फंडिंग होती है, वो तो करते ही हैं, बट दीज आर ऑल सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स।
क्या अच्छा बात है, बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं अर्चना जी आप निश्चित रूप से, और बहुत सारा बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर रही हैं।
जी अर्चना जी, आपने बातों बातों में बताया कि आपने 2-3 सरकारी नौकरियां छोड़ी, फिर आप एनजीओ फील्ड में आई, और दूसरी बात आपने बोली कि आप फिल्म मेकर भी हैं, और हम आपके रेडियो उत्सव के बारे में भी जानते हैं जो आप कितने शायद 4-5 सालों से चला रही हैं, जो इतना विशाल उत्सव होता है, आपने सारे देश के हर रेडियो को जोड़ा है। इन सब बातों को जोड़ करके आप हमको अपनी अपनी जानकारी और इस रेडियो उत्सव के बारे में भी बताइए।
मेरी स्टोरी तो बहुत बोरिंग है, तो इसलिए उसको संक्षिप्त में ही कहूंगी। मैंने अपना करियर ONGC, आप सभी जानते होंगे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी से मैंने शुरू किया था, वो एक नवरत्न कंपनी है। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि मेरी एक साथी वहाँ चेयरमैन भी बनी, पहली महिला जो चेयरमैन बनी एक बहुत ही मेल प्रेडोमिनेंट इंडस्ट्री की, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस है। तो इसलिए बहुत खुशी भी होती है कि हम उस बैच के थे, तो हमने वहीं से अपना करियर शुरू किया। फिर लगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ में कौन कहाँ अपनी पहचान बनाएंगे, रेडियो एक पहचान बन गई है, एक अपनी भी पहचान बनाने की इच्छा थी। फिर हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लखनऊ में, क्योंकि मैं यूपी की हूँ, वहाँ मैंने एज अ फैकल्टी काम किया, मैंने IIT दिल्ली में एज अ रिसर्च फेलो काम किया, बहुत सारे काम किए मैंने। तो ये 3 तो सरकारी नौकरियां छोड़ करके फिर हमने कुछ फ्रीलांस काम किया स्क्रिप्टिंग वगैरह पे, एंड देन आई जस्ट गॉट इनटू एनजीओ। मैं बांग्लादेश गई थी और वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर होकर आई थी ब्रैक का काम देख के, और मुझे लगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो मुझे एनजीओ ही करना है, एनजीओ ही चलाना है और लोगों को इसके माध्यम से एम्पावर करना है। तो फिर हमने अपना एनजीओ स्टार्ट किया 1997 में, और धीमे धीमे उसको काम किया, फिर ऑटोमेटिकली मौका लगा मेवात जाने का, और रियलाइज़ किया कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं एक तरीके से, कि हमें अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छी परवरिश मिली, अच्छे मौके मिले, और क्यों ना ये मौके औरों को भी दिए जाएं। वही सोच से हमने ये अपना काम वहाँ एनजीओ का काम स्टार्ट किया, एजुकेशन से स्टार्ट किया, फिर वेमेन एम्पावरमेंट में गए, फिर यूथ डेवलपमेंट में, उनको स्किल डेवलपमेंट में गए, और फिर 2008 से रेडियो का सिलसिला चालू किया है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग एनजीओस को बहुत ऐसी नज़र से देखते हैं कि आप काम कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आपका ये प्रोग्राम का माध्यम एक बना करके कहना चाहूँगी लोगों को कि कोई भी एनजीओ जो मेरे संपर्क में है पैसा बनाने के लिए नहीं आया है। वो सब कुछ लोगों के साथ उनको एम्पैथी है, उनको लगता है कि वो प्रिविलेज्ड हैं, वो उनको कुछ देना है सोसाइटी को वापस, और साथ में ऐसा नहीं है कि एक हम बहुत हाई पेडेस्टल, एक हाई मॉरल पोजीशन लेकर के हम लोगों से बात करते हैं, हम साथ में बात करते हैं। जब तक साझेदारी नहीं होगी, जब तक स्टेक होल्डर्स नहीं बिल्ड होंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। हम लोग कैटलिस्ट्स हैं, चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। हम सिर्फ एक राह दिखा सकते हैं, बदलने वाले लोग वही बदलेंगे जो बदलना चाहते हैं। तो इसको लेके एक सपना लोगों का साकार करना, लोगों को एक होप देना, एस्पिरेशन देना, वो हम लोग ने अपना काम समझा है और उसी बेसिस पे हम लोग काम निरंतर करते आ रहे हैं। तो हम, अगर आप कहें कि हमने ये बिल्डिंग बना ली, हमने ये कर लिया, हम लोग कभी भी इस तरीके का कोई भी काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इन्फॉर्मेशन से जुड़े काम करते हैं। जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं, और 250-300 फिल्में बनाई हैं, ज़्यादातर सरकार के लिए फिल्में बनाई हैं या विदेशी सरकारों के लिए फिल्में बनाई हैं, वो भी सारी सोशल सेक्टर में है या फिर डिप्लोमेसी के ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए मैंने बहुत काम किया है, अपनी सरकार के लिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए। मेरी फिल्में उनके यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग देख सकेंगे, इन द नेम ऑफ अर्चना कपूर प्रोडक्शंस। जहाँ तक आपका लास्ट सवाल है रेडियो फेस्टिवल का, उसके पीछे भी ये सोच थी कि हम लोग हर दिन मनाते हैं, हम लोग मतलब हर सेक्टर को मनाते हैं। हम लोग डांस फेस्टिवल करते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल करते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स करते हैं, लेकिन हम लोग साउंड फेस्टिवल नहीं करते, ऑडियो फेस्टिवल नहीं करते। हम लोग बैंड्स का करते हैं, लेकिन हम जो सेलिब्रेशन ऑफ ऑडियो नहीं होता, और जो हमारा वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाते हैं यूनेस्को के माध्यम से, हमने सालों साल उसको हम जाते थे, कुछ लोग पैनल करते थे, फिर हम लोग लंच करते थे, फिर हम लोग वापस आ जाते थे, लेकिन सेलिब्रेशन नहीं था। तो हमें लगा कि जब रेडियो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, वर्ल्ड रेडियो डे इज फॉर एवरीबडी, तो क्यों नहीं हम इसको एक जश्न के रूप में सेलिब्रेट करें। और ये आइडिया जब हम यूनेस्को के पास लेके गए आज से 6 साल पहले, तो उनको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और सांगिया जी ने कहा कि हम बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन एक बहुत कठिन, मतलब मेरी आदत है कि शायद मैं अपने लिए ऑब्स्टिकल लेवल्स बढ़ाती चली जाती हूँ, और डिफिकल्टीज का जो लेवल होता है उसको बढ़ाती चली जाती हूँ। नो में रेडियो स्टेशन करना, पूरे देश के रेडियोज के साथ काम करना, और फिर अब एक रेडियो फेस्टिवल चालू कर देना, 6 साल, हर साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, रीच आउट करना पड़ता है। कम से कम हम लोग को 3 से 4 महीने लगते हैं एक दिन के अफेयर को करने में, पैनल्स डिस्कस करना, लोगों को बुलाना, इट्स अ ह्यूज ह्यूज एक्सरसाइज। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत लोग जुड़े हैं हमारे साथ, प्रसार भारती हमारा एक अहम स्पॉन्सर बना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी अलग अलग तरीके से मदद करता है, यूनेस्को तो है ही, और हम कोशिश करते हैं कि और लोगों को भी जोड़ें जिससे कि ये और बड़ा हो सके। लोग तो अपने आप आते हैं, लेकिन हम जानते हैं सामुदायिक रेडियोज के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो कोशिश करते हैं कि उनको हम इन्वाइट करें। हर किसी को तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन लगभग 100 रेडियो स्टेशन को तो कोशिश ही करते हैं, कुछ वर्कशॉप्स करके थोड़ा सा और फंड रेजिंग करते हैं। So these are some of the things that we do, and we really look forward to more power to all radios, to everybody, जो कि इसको एक बहुत बड़ा इवेंट में इसको कन्वर्ट कर सकें। बहुत कठिन काम है, बहुत आपको परसिवियरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, आपको बहुत पैशन चाहिए एनजीओ में काम करने के लिए। इट इज नॉट इजी।
इजी तो कोई भी काम नहीं होता अर्चना जी, काम करने का पैशन जिसको जिस भी क्षेत्र में होता है उसमें वो लग कर करता ही है, और कर्म ही पूजा है मान करके जो लोग काम करते हैं वो लोग आपकी तरह सफल होते ही हैं। तो आप आने वाले रेडियोज के लिए और क्या कहना चाहेंगी, कम्युनिटी रेडियोज और जो लोग खोलना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं?
सांगे जी, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आप लोग गाइडलाइन जरूर पढ़ें जो भी नए रेडियोज आते हैं। और यदि आप इस मकसद से आ रहे हैं कि आप इसके माध्यम से कमर्शियल हो जाएंगे या पैसा बनाएंगे, तो आपकी सोच गलत है। क्योंकि आप और सब लोग कहते हैं कि फाइनेंशियली ये नहीं है वो नहीं है, मैं सबसे ये कहती हूँ कि जब एनजीओ आपने चालू किया था या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चालू किया था तो आपने अपने पैशन की वजह से किया था ना, आपने कुछ गिविंग बैक टू सोसाइटी के लिए किया था, आपने पैसा बनाने के लिए नहीं किया था या पैसा कमाने के लिए नहीं किया था। तो उसी तरीके से कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप रेडियो चालू करें, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं कि आप कम्युनिटी रेडियो ही रन करें। ओनली अगर आपको अपना मतलब आप अगर 100% कमिटेड हों, डेडिकेटेड हों कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए और अपने को चेंज करने के लिए तैयार हों फ्रॉम टाइम टू टाइम, तभी आप एक सामुदायिक रेडियो जैसे एक सेक्टर में आएं और फिर अपनी एप्लीकेशन भरें। क्योंकि अगर आप इस मकसद से आ रहे हैं कि आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, आप बहुत फेमस हो जाएंगे, आपको सब लोग आकर के कहेंगे ये लो पैसे, ये चला दो, ये चला दो, दैट इज नॉट द पर्पस। कम्युनिटी फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
जी अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई। अब हमारे पास सिर्फ इतना वक्त है कि हम आपसे कह सकें धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मुझे आशा है कि कुछ आप लोग के रेडियो के माध्यम से और लोग जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।